मुश्किल अल्फाज की वजाहत और उनके मादा जात रूप सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 61। पुलना का रूट क्या है? तावोलाम। और इसका जो है वो ऑर्डर का सीगा है कुल कह, चारों कुल भी आपको आता है ना, और पुलना हमने कहा। फिर आप देखें कि यहां पर जो है साथ ही आदम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वाइस कुलना लिल मलाइकति इस्जुदु ले आदमा, इसका रूट है अलिफ दाल मीम, और ये लफ्ज जो है ये आदमी के लिए इस्तेमाल होता है, आदमी। अब आप देखें कि आदमी के लिए कुरान में लफ्ज आया है एक इंसान का, इंसान, दूसरा है आदम और तीसरा है बशर का। तो आदम किसे कहते हैं? इसके असल मानी है मलाइम, मुआफकत, हर वो चीज जो मलाइम हो, जिसके अंदर मुआफकत पाई जाती हो, उसको जो है आदम कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह, एक सहाबी हैं, उनको जो है वो फरमाया था कि एक औरत को पैगाम निकाह के सिलसिले में आपने कुछ हदायत की थी। उसमें ये कहा था कि अगर तू अपनी मंगेतर को एक नजर देख ले तो इससे तुम्हारे दरमियान उल्फत और खुशगवारी पैदा होने का ज्यादा इम्कान है। एक नजर, जब लोग सुनते हैं बात को भूल जाते हैं कि वो असल बात क्या थी। तो लव नजरता इलैहा, नजरता इलैहा फइन्नहु अहरा अन युदमा, युदमा का लफ्ज यही आदम के रूट से इस्तेमाल हुआ है, बैनकुमा, तो इससे तुम्हारे आपस में जो है वो खुशगवारी और मोहब्बत जो है वो पैदा हो सकती है। आदम जो है ये इसके मानी है, और ये लफ्ज जो है ये इस्म जिन्स भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब बोला जाता है लफ्ज तो अफरादे जिन्स पर भी इसका इतलाक किया जाता है। आयत नंबर 62 है, 62, और इसमें लफ्ज है लआहतनिकन्ना, और इसका रूट है हा नून काफ। हा नून काफ जो है ये हा नून कैफ, ये जो है ये तालु को कहते हैं, हुनक, तालु, मुंह खोले ना तो जबान के ऊपर जो छत नजर आ रही है आपको, उसको तालु कहते हैं, हुनुक। तो हा नून कैफ, असल में घोड़े के मुंह में रस्सी देना, लगाम देना, एह तनकल फर्स, तो अल हुनुक उस आदमी को कहते हैं जिसे जमाने ने तजुर्बा कार बना दिया हो। जैसे इंसान तजुर्बा कार कैसे बनता है? जब किसी चीज पर अपनी अकल और तजुर्बे की वजह से काबू पा लेता है तो तजुर्बाकार बन जाता है। तो यहां पे लआहतनी करना, तो शैतान जो है क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है। तो इंसान या चौपाए के तालुक को कहते हैं, कव्वे की चोंच को भी हनक कहते हैं, क्योंकि वो किसी चीज पर जब काबू पाता है ना तो उसको लेकर चट कर जाता है। कव्वा जो है जबरदस्त चट करता है, सफाया कर जाता है, अपने बस में कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। तो बहरहाल लआहतनिकन्ना, तो शैतान जो है वो क्या करेगा? शैतान ने ये चैलेंज किया था कि वो जो है वो काबू में लेगा, पूरी तरह जो है वो कंट्रोल करेगा, बेतनी कर देगा, इंसानों के कदम सलामती की राह से उखेड़ देगा। और फिर इससे कहते हैं कि इहतनाक का लफ्ज जो है ये किसी चीज को जड़ से उखेड़ देने के लिए इस्तेमाल होता है। जब कोई चीज काबू में आ जाए तो मानी क्या है कि उसको जड़ से उखेड़ के रख देना, उसको बिल्कुल खत्म करके रख देना, उस तरह भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो शैतान ने कहा था लाअहतनी करना कि मैं जरूर बा जरूर जो है वो जड़ काटता रहूंगा और मैं काबू में कर लूंगा, मैं इनको लगाम दे दूंगा, हर तरह ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद है आयत नंबर 63 मौफूरा, मौफूरा और इसका रूट है वफारा, और मौफूरा जो है इसका मतलब है भरपूर जजा, भरपूर जजा, जजा है ना पहले इस्तेमाल हुआ, और मौफूर के मानी है भरपूर। वाफर भी आप बोलते हैं कि ये चीज वाफर है, आप बोलती है ना कि खाना वाफर है या मेरे पास ये चीज जो है वो वाफर तादाद में पाई जाती है। तो उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसके मानी होते हैं ज्यादा, बहुत, और वैसे बहुत के लिए कुरान में 8 लफ्ज आए हैं, कसीर, कौसर पहला, दूसरा जम, जम्मा, वतुहिब्बून अलमाला हुब्बन जम्मा, तीसरा मरकूम, मरकूम का लफ्ज आप पढ़ चुकी हैं सूरत नंबर 8 में, वयज अल खबीसा बादहु अला बादिन फयरकुमहु जमिया। तो रा काफ मीम का मतलब होता है कि तय बतय होकर किसी चीज का ढेर लगा देना या ढेर लग जाना, जैसे जहन्नमी जो है वो तो जहन्नम में मरकूम की शक्ल में होंगे, तय बरतय उनके ढेर लगे हुए होंगे। बादलों का गाढ़ा होना, बादल बेतरतीब एक दूसरे के ऊपर आते हैं ना, उस वक्त भी ये इस्तेमाल होता है, कमत सहाब। बहरहाल पांचवा है लुबादा, यकूल वाहलकतु माल लुबादा, ये असल में तय जमाए बालों और ऊन को कहते हैं, बिखरी हुई चीज को इकट्ठा करना, गुंजान बनाना। पांचवा है रगदा, पकुला मिन्हा रगदन है शेतुमा, रगदन बाफरागत, तो रिज्क की कसरत के लिए आता है, खूब खाओ बाफरागत खाओ। छठा है गदा का, ये आप आगे कुरान में पढ़ेंगी, पानी की कसीर मिकदार के लिए आता है। सातवां है सज्जा, पानी का जोर से बहना, वनजलना मिनल मुसिराती मा अन सज्जा जा, ये सूरत नबा आप हिफ्स जब करेंगी इंशाल्लाह 30वें पारे में वहां पढ़ेंगी, पानी का जोर से बरसना और बहना। और आखिरी लफ्ज है मौफूरा, आखिरी दर्जा, किसी चीज के इतमाम और कसरत के लिए आता है, पूरा करना, ज्यादा करना, इसको इसका पूरा पूरा बदला देना, कुछ ज्यादा ही दे देना, यानी पूरा होने के अलावा ज्यादा के लिए आता है, जजा मौफूरा, खूब ज्यादा। आयत नंबर 64 वस्तफ़ज़, रूट है किसी को घबराहट में मुब्तला करके निकाल देना। तो अब आप देखें कि यहां पर जो है ये लफ्ज फज़ा का इस्तेमाल हुआ है, और इसके मानी क्या है कि घबराहट में मुब्तला करके किसी को निकाल देना। इसके लिए कुरान में आपने पहले भी मैंने आपको बताए हैं 7 लफ्ज हैं, जिसका पहला फरागा, दूसरा जजिया, तीसरा फजिया, चौथा करूबा, पांचवा हला, छठा इतरा, और बहरहाल आखिरी लफ्ज है इस्तफज़ा। और फज़ा के मानी है किसी के होश उड़ा देना, किसी को घबराहट में मुब्तला करके निकाल देना, किसी को जो है वो जलील कर देना, हल्का बना देना, बेचैन कर देना। वस्तफ़ज़, फिर इसके बाद है आयत नंबर यही 64 में ही सऊती का, और सऊत का लफ्ज जो है हाँ इसका रूट है स्वाद वो ता, और ये लफ्ज जो है ये आवाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू में भी बड़ी कसरत से लफ्ज इस्तेमाल होता है सऊत का। और इसका यही रूट है, और ये लफ्ज जो है वो आवाज के लिए आता है। बहरहाल आवाज के लिए जो कुरान में लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं ये है 20, और पहला दर्जा सौत का है। आवाज के लिए ये आम इस्तेमाल होता है, मसलन आप बोल रही हैं तो बोलने की आवाज, कोई चीज जो है वो किसी से टकरा रही है तो उसकी आवाज, कोई चीज मुंह से निकले हुए हुरूफ पर मुश्तमिल हो या आम निकली हुई कोई भी आवाज हो, हर आवाज के लिए साउथ का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो हर वो कुछ जो सुनने वाले के कान से टकराए वो आवाज है, ये इसकी तारीफ है, ये बड़ी खूबसूरत तारीफ है। कुल्लू मा वकारा फी ओजने सामे, मैं बाकी आपको बताती नहीं हूं, 20 लफ्ज हैं वैसे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलाती हूं कि जो आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आपको पता चले कि 20 में से इतने ज्यादा मुझे आते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आप परेशान नहीं होंगी। मसलन सौत का लफ्ज आपको पहले ही आता था। अच्छा दूसरा है कस दिया, आपने पीछे पढ़ा था कि मा काना सलातुहुम इंदल बैती इल्ला मुका अव कस दिया, हाँ, कि वो लोग जो है वो उन लोगों की नमाज खाना काबा के पास सीटियां और तालियां बजाने के सिवा कुछ भी ना थी, ये सूरत नंबर 8 में आपने पढ़ा था। फिर वल आदियाती दबहा, ये तो आप दबहा तो आता ही है ना, सूरत आदियात आती होगी, तो द्वाद बहा घोड़े के तेज दौड़ने की वजह से उसके हांफने की आवाज। फिर आपने जो है वो खुआर लफ्ज पढ़ा है, हाँ, गाय या बछड़े की आवाज, गाय या बछड़े की आवाज। फिर आपने जफीर लफ्ज पढ़ा है ना, जफीरों व शहीक, तो जफीर और शहीक ये दो लफ्ज पढ़े हैं आपने। हाँ जफीर जो है वो गधे के रींगने की इब्तदाई आवाज, और शहीक जो है उसके रींगने की आवाज जो है जो आखिरी आवाज जब वो रींगने को खत्म करता है, और फिर जहन्नुम की ये आवाज है। बात कहते हैं जहन्नुम में जो जहन्नमी जो है वो चीखेंगे बिलबिलाएंगे धाड़े मारेंगे, तो उनकी आवाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर आपने ये लफ्ज भी पढ़ा है कुत्ते के हांफने की आवाज जो गर्मी, लहस शाबाश लामहा सा। फिर जो है सेहा का लफ्ज आपने कितनी दफा पढ़ा है, सेहा जो है क्या बताया था आपको, लकड़ी जो है, हाँ लकड़ी को जब चीरा जाता है तो उस वक्त जो आवाज आती है तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। और वैसे फिर आवाज फाड़ फाड़ कर चिल्लाना, गरजदार आवाज, धमाका, हर बेमानी और बुलंद आवाज को सेहा कहते हैं। फिर आपने जो है वो साखा, फाइजा जाति सौखा, ऐसी आवाज जो कानों को बहरा कर दे। अब देखें जहाज में आप होते हैं तो कान बिल्कुल बंद हो रहे होते हैं ना, उसी तरह तगयुज का लफ्ज है, और कारिया तो मैंने बीच बीच में से बोले हैं ताकि आप ज्यादा परेशान ना हो, बहरल सऊत। फिर इसके बाद दूसरा लफ्ज है अजलिब, हाँ इसका है जीम लाम बा, जीम लाम बा, और इसके मानी क्या होते हैं जीम लाम बा के, हाँ किसी चीज को जो है वो खींच कर किसी चीज को लाना, किसी चीज को चलाना, हांकना, किसी चीज को चलाकर जबरदस्ती आगे बढ़ाना, इसी से जिलबाब भी है। जिलबाब क्या कहते, किसे कहते हैं, चादर को कहते हैं। चादर को आप क्या करती हैं, आप उसको जो है वो लेती हैं, फिर उसको आप फैलाती हैं, और फिर आप अपने ऊपर उसको ले लेती हैं ना, तो यानी चादर को उठाया लिया और फिर अपने इर्द गिर्द जो है उसको लपेट लिया, तो उसको चलाकर जबरदस्ती आगे बढ़ा दिया, अपने ऊपर ले लिया, तो जिलबाब का लफ्ज़ भी। और अजलिब चढ़ाला, ये ऑर्डर का सिवा है। बेखैली का। खैल जो है ये इस्म जिन्स है खैल, और ये ख्याल के लिए भी आता है, घोड़े के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। अच्छा घोड़ा क्या करता है? घोड़ा जो है वो भागता है ना, तो जो ख्याल होता है उसमें क्या होता है कि तसव्वुर ही तसव्वुर में आप उड़ रहे होते हैं, कहीं से कहीं आप पहुंच जाते हैं। तो घोड़ा भी है और ख्याल भी है, और हर किस्म के घोड़े के लिए खैल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, नर हो या मादा। इसका इस्तेमाल घोड़ों के गल्ले पर भी होता है, ग्रोह पर भी होता है। वल खैल वल बिगाल वल हमीरा, ये आपने पिछली सूरत निहाल में पढ़ा था ना, आपने सूरत नहल में पढ़ा था। वल खैल वल बिगाल वल हमीरा लितरकबूहा वजीना। और कहते हैं खैल का इस्तेमाल घुड़सवार और घोड़े के मजमूए के लिए भी होता है, हाँ सवारों की जमात के लिए भी इस्तेमाल होता है। और खैल ख्याल को कहते हैं क्योंकि तसव्वुर ही में आप जो है जैसे उड़ रहे होते हैं, ऊपर ही ऊपर आप जा रहे होते हैं। वह रजेलिका, इसका रूट है रजेलिका, रा जीम लाम, और रा जीम लाम का जो लफ्ज है इसके मानी है, हाँ अगर जो है ये रजुल हो तो मर्द को कहते हैं, और अगर ये रिजल हो तो ये फिर पांव के लिए इस्तेमाल होता है। पर रजेली का पांव से चलने वाले प्यादा के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। वशारिकुम, शीन रा काफ, शीत भी इसी से है, और शारिक होता है कि किसी को शरीक करना। अमवाल माल की जमा है, रूट इसका क्या है मीम वाव लाम, और औलाद जो है इसका वाहिद क्या है वलद, वाव लाम दाल, इसकी जमा है औलाद, बेटी बेटा सब के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और फिर है गुरूरा, गुरूरा का लफ्ज जो है ये धोखे के लिए इस्तेमाल होता है, हाँ, और इसका रूट है गैन रा रा, किसी को गाफिल पाकर इसे अपना मकसद हासिल करना, फ्रेब देना, फांसना, गुरूर। गैन के ऊपर जब पेश होती है ना तो धोखा देना, गैन के ऊपर जब जबर होती है तो धोखा देने वाला। ये बारीक सा फर्क है, अगर याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, दुनिया के लिए भी इस्तेमाल होता है ना, मताउल गुरूर। दुनिया क्या है? मताउल गुरूर है, धोखा देती है ना। और वैसे आप कहती हैं कि उसके अंदर गुरूर पाया जाता है, वो धोखा देने वाली है, इस तरह भी आता है। वगरत कुमुल अमानी यू, तुम्हारी जो आरजू है उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। आयत नंबर 66 है, 66 सूरत बनी इसराइल, इसमें लफ्ज है यूज जी, इसका रूट है जे जीम वो, और इसके मानी है चलाना चलाना। अब आप देखें कि चलाने के लिए कुरान में 6 लफ्ज आए हैं, और एक है साका पीछे से चलाना, दूसरा है हर्रा का हरकत देके चलाना, तीसरा है यूज जी या अस जी, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये है धीरे धीरे चलाना, आहिस्ता आहिस्ता हांकना, नरमी से चलाना, यानी किसी को चला तो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे नरमी से आहिस्तगी से। फिर आयत नंबर 67 है 67, और इसमें लफ्ज है नजाकुम, क्या रूट है इसका नून जीम वाओ, निजात देना, बचाना। आरतुम ऐन रादवात, चौड़ाई के लिए भी आता है, एराज करना, मुंह मोड़ना के लिए भी इस्तेमाल होता है। आयत नंबर है 68, इसमें लफ्ज है अफा अमिन तुम, रूट क्या है? हमजा मीम नून। फिर जो है वो दूसरा लफ्ज है यक्सिफा, खा सीन फा। हाँ, इसके मानी है कि जमीन के अंदर जो है वो धंसा देना। और असल में खास इंफा जमीन में धंसाना तो आता है, ये अजाब की एक किस्म है। और चांद ग्रहण लगना जो है उसको खसूफ कहते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन सूरज ग्रहण जब लगता है तो कसूफ होता है, काफ से, ये फर्क है। अब चांद और सूरज तो दोनों ही ऊंचे हैं ना, तो बहरहाल ये लफ्ज जो है ये अजाब की एक किस्म है। और खसफा, और अजाब के लिए कुरान में जो है वो कई लफ्ज आए हैं, जिसमें से एक तरफ छह हैं और उसके अलावा भी छह सात और हैं। यानी कुछ है कि हवाई अजाब के लिए, हवा में जो अजाब होता है हवा का, जैसे रीहिन, सरसर, समूम, आसिफ, एसार, कासिफ, नफखा। और इसके अलावा जो अजाब के लिए हैं वो छह लफ्ज हैं। और खासीन फास का आखिरी दर्जा है, इसके मानी है खसफ अल कमर, चांद का गहनाना, खसफ अल आइन, आंख का जाता रहना, अपने गले में बैठ जाना। यानी आंख जब यानी अंदर चली जाती है या उसकी रोशनाई चली जाती है तो क्या हुआ कि आंख की रोशनाई चली गई। इसी तरह खसफा फुलान, किसी को जिल्लत की बात पर मजबूर करना, खसफा फिल अर्द, जमीन में धंसा देना। खसफा के अंदर दो बातें खास तौर पर पाई जाती हैं, इसको आप याद कर लें। नंबर एक डबो देना, नंबर दो जिल्लत और नागवारी। किसी चीज को कहरन या इस तरारन डुबो देना उसके लिए भी आता है, जैसे कानून के लिए है फा खसफना बही व बेदार हिल अर्द, तो जमीन के अंदर उसको जो है वो डबो दिया या जमीन के अंदर उसको धंसा दिया। तो बहरहाल खसफा का लफ्ज इस तरह इस्तेमाल होता है। फिर है आयत नंबर 68 ही में हासिब लफ्ज है, हा स्वाद बा, पत्थर को भी कहते हैं, और किंकर उड़ाने वाली आंधी के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कि वैसे आप देखें तो हवाएं तो बहुत सी होती हैं ना, तो हासिब जो है, हासिब पत्थर किंकर उड़ाने वाली आंधी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नागवार हवाएं, नागवार हवाओं के लिए 13 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। और हासिब जो है इसका सातवां दर्जा है, हासिब बल्कि छठा दर्जा है। तेज आंधी, पत्थर किंकर उड़ाने वाली हवा, घोड़े का इतना तेज दौड़ना कि इसके पांव से किंकरियां हवा में उड़ने लगे, तो भी इस्तेमाल होता है हासिब। आयत नंबर 69 है और यहां पे लफ्ज है कासिफन, काफ स्वाद फा, इसका सातवां दर्जा है, नागवार हवा को कहते हैं। ये वो हवा है जो दरख्तों तक को तोड़ देने वाली हो, इतनी सख्त हवा, आंधी का तूफान, तोड़ना, तेज तुंदो तेज आंधी चले तो जो दरख्तों को तोड़ कर रख दे, गिरा कर रख दे, गरजदार आंधी, तोड़ फोड़ करने वाले। फिर है आयत नंबर 69 ही में लफ्ज है फयुग्रिकाकुम, गैन राकाफ, घरक कर देना, ये आप उर्दू में भी इस्तेमाल करती हैं। और इसके बाद है तबीआ, 69 जो आयत है सूरत बनी इसराइल की, इसका आखिरी लफ्ज है तबीआ। ओ हाँ, इसका रूट है ता बा आयन, और इसके मानी है इसके मानी है पीछा करने वाला, अच्छा जो पीछा करता है वो कौन होता है, जो किसी का मददगार होता है, तो पीछा करना ताकि उसकी जो है वो मदद की जा सके, तो इस तरह ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है। और ये लफ्ज जो है फिर इस्तेमाल होता है जैसे नासिर और मददगार के तौर पे भी, कि कोई मदद करने वाला जो है वो किसी का पीछा करे, इस तरह ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अतबा लाजिम मुतबी दोनों तरह इस्तेमाल होता है, पीछे लगना लगाना। आयत नंबर 70 में बर और बहर एक दूसरे के ऑपोजिट इस्तेमाल हुए हैं। आयत नंबर 71 है और इसमें लफ्ज है फतीला, हाँ ये आपने आज आपका कितने लोगों का आज रोजा है, माशाल्लाह जो है वो 10 मुहर्रम का रोजा है और सबने रखा है। और जब आप रोजा खोलेंगे आज शाम को तो आप जब खजूर खाएं तो दोबारा ये लफ्ज जो है ना इनको थोड़ा सा आप लोग दोहरा लें। इसका रूट है फा ता लाम, और जो मैं कहती हूँ ना दोहरा लें, इसका बड़ा फायदा होता है क्योंकि बार बार की रेपिटिशन जो है वो तकरार जो होती है ना उसको लफ्ज को पक्का याद करवा देती है। तो फा ता लाम का लफ्ज जो है ये थोड़ा थोड़ी हकीर मामूली चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा अब आप देखें कि मामूली चीज के लिए थोड़ी चीज के लिए आपने और क्या लफ्ज पढ़े हैं और फतील जो है इसके माने क्या हैं। अब आप देखें कि पहला है इसका इसका लफ्ज जो पहला इस्तेमाल है वो है कलील। कलील तो आपको आता ही है कि हर ज्यादा चीज के मुकाबले में थोड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा है फतील। फतील क्या होता है, थोड़ी सी मिकदार को कहते हैं। अब आप देखें कि चिराग के अंदर जब चिराग जल रहा होता है तो उसके अंदर जो रस्सी बटकर अंदर डाल दी जाती है उसको भी फतील बोला जाता है, वो थोड़ी सी होती है ना जल रही होती है। इसी तरह बारीक धागे को भी कहते हैं जो खजूर की गुठली के शगाफ में होता है। खजूर आप खाएं जो गुठली है ना आप देखें कि लंबी सी उस पर एक धारी सी बनी होती है, तो उसके अंदर जो बारीक सा धागा नजर आता है ना उसको फतील कहते हैं। तो इस तरह ये लफ्ज फतील का बहुत थोड़ी मिकदार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थोड़े के लिए एक लफ्ज नकीर भी है, नकीर नून काफ या रा, और नकीर जो है इसके मानी क्या होते हैं कि खजूर की जो गुठली होती है उसमें लंबी सी जो एक लाइन होती है ना उसके कॉर्नर पर देखें सिरे पर एक छोटा सा नुक्ता होता है, बहुत छोटा सा होता है, तो उसको उसके लिए आता है लफ्ज नून काफ रा, गोल सा जो छोटा सा निशान होता है खजूर की गुठली में छोटे से गोल निशान को नकीर कहते हैं। इसी तरह परिंदे ने चोंच लगाई उसके लिए भी आता है ये लफ्ज, परिंदा जब चोंच लगाता है तो छोटा सा एक निशान पड़ता है ना उसकी चोंच को भी कहते हैं मिनकार। परिंदे ने दाना चुन लिया उसके लिए ये लफ्ज आता है नकर तैरुल हुब। तो नकीर के मानी भी बहुत थोड़ी मिकदार होती है, आप इसको यूं याद कर सकती हैं कि कलील पहला दर्जा है फतील दूसरा है। क्यों फतील दूसरा है, लंबी लाइन के अंदर जो लंबी सी लाइन है उसके अंदर थोड़ा सा धागा ना है ना वो थोड़ा ज्यादा होता है ना, लेकिन जो नुकता होता है खजूर का बहुत ही छोटा होता है, इसलिए उसका तीसरा दर्जा है। फर्क पता चलेगा आपको ना। चौथा कितमीर है, कितमीर ये आप सूरत नंबर 35 में पढ़ेंगी। कितमीर क्या होता है कि खजूर की गुठली के ऊपर बारीक सा पर्दा, तो अब आज आपको खजूर जो है ना वो जरूर खा ले शाम को तारी जब करें और जायजा लें कि अच्छा ये है ये है। अच्छा कितमीर का मतलब है खजूर की गुठली के ऊपर बारीक सा पर्दा या झिल्ली, ये ना होने के बराबर होती है ना, तो ये चौथा दर्जा है। जैसे आप कहती हैं इससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ना होने के बराबर है तो कितमीर है। और पांचवा है फवाक, फवाक, फवाक जो है इसके मानी होते हैं थोड़ी मुद्दत या वक्फा। अच्छा इसको आप इससे याद रखें कि जब गाय का दूध धोया जाता है ना, गाय या भैंस का दूध उसके थनों से निकाला जाता है, अब दूध धोने वाला दूध धोते हुए क्या करता है, वो अपने हाथों से मतलब मुट्ठी में ले लेता है ना थन को, तो उसको ना थन को दबाता है और नीचे से यहां से दबाते हैं ना तो दूध निकलता है। अब जब वो दूध को दबाता है तो दूध निकल जाता है, फिर वो क्या करता है, यूं थोड़ा सा मुट्ठी को छोड़ता है और जब छोड़ता है दूध फिर उसके अंदर और आता है, फिर वो दोबारा दबाता है। तो ये जो दूध धोने वाले का हाथ से थनों को दबाना और हाथ खोलना, तो दबाने और खोलने के दरमियान का जो वक्फा है ना वो फवाक है। तो अरब के अंदर खजूरें भी बहुत थी तो इसलिए चार लफ्ज, तो इसलिए तीन चार ये याद कर लें और फिर दूध धोना तो पांचवा इस तरह आप याद कर लें। बहरहाल तो दो दफा धोने के दरमियान का वक्त या दूध धोते हुए थनों को दबाना और खोलना, बहुत मामूली इसमें फर्क होता है। ये नहीं होता कि आप बैठे हुए रेस्ट कर रहे हैं, क्या वो गाय नहीं दोबारा वास आने देती, वो टांग मारती है। तो एक दफा जब वो दूध देती है, दूध जो है उसको जब थनों से निकाला जाता है तो थन को छोड़ना और प्रेस करना, छोड़ना और प्रेस करना, उसके दरमियान जो बहुत कलील मुद्दत होती है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है फवाक। अल्लाह अकबर, बड़ा मजा आता है वैसे है ना कुरान को पढ़ने और समझने में। बहरहाल आयत नंबर 72 है, इसमें आमा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अंधे के लिए आप तीन लफ्ज पढ़ चुकी हैं, एक है ऐन मीम या। ऐन मीम या जो है ये आंखों के अंधे को कहते हैं और ऐन मीम हा जो है ये दिल के अंधे के लिए इस्तेमाल होता है। तो आमा जो है ये क्या है, आंखों का अंधा, और अकमा मादरजात अंधा, जो मां के पेट से अंधा पैदा हो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। और इसके बाद है आयत नंबर 74 और इसके अंदर लफ्ज है किट्टा, लकत किट्टा। इसका रूट है काफ वाव दाल, नजदीक होना, करीब होना, किट्टा। अब आप देखें आयत नंबर 74 में कलील लफ्ज भी आ गया है ना, तो कलील आ गया। आयत 71 में आपने फतील पढ़ा है तो मुतरादिफात में से हो गया ना, थोड़ा सा बारीक सा फर्क है। तो कलील पहला दर्जा है, फतील दूसरा दर्जा है, और नकीर तीसरा दर्जा है, और चौथा दर्जा क्या है, तितमीर है। अच्छा इसके बाद आप आइए आयत नंबर 76 में, और इसमें रूप क्या है, लयस्तफिज़ूना का, हाँ फा जा जा या फा जे जे है ना, तो ये इसका रूप है। और इसके मानी क्या होते हैं, किसी को घबराहट में मुब्तला करके निकाल देना, लयस्तफिज़ूना का, ये आयत 76 में है ना, और ये पीछे आपने आयत 64 में भी पढ़ा है ना, कि किसी को हल्का और कमजोर पाकर उसे बहा ले जाना, उसके कदम फिसला देना, घबराहट में मुब्तला करके किसी को निकाल देना। जो घबराया हुआ होता है वो जलील होता है, वो हल्का हो जाता है, बिल्कुल ही जैसे हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए आयत नंबर है 77 और इसमें लफ्ज फिर आ गया तहमीला का है ना, तो वही तब्दीली के लिए आता है, खा वाउलाम इसका रूट है। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 78 अकेम मीम, और यहां पे अकीम जो है ये ऑर्डर का सिगा है। दूसरा है ये दुलूक की, दुलूक जो है इसका रूट है दाल लाम का, इसका मानी है ढलना। ढलने के लिए कुरान में दो लफ्ज आए हैं, एक तो जवाल है ना, जाला, जे वो लाम, सूरज का ढलना, सूरज का सर पे से ढलना, ढलने का वक्त। जवाल का लफ्ज किसी चीज के अपनी इंतहा की बुलंदी पर पहुंचकर बतदरीज नीचे आने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जवाल का लफ्ज किसी चीज का अपने सही रुख को छोड़कर एक जानिब माइल होने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे किसी की हुकूमत मिट गई उसके लिए भी आता है कि जाल अनहू मुल्क को, तो उसका मुल्क जो है वो उससे हट गया, मिट गया। अच्छा, दूसरा लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो है दुलूक का, और दुलूक जो है सूरज का गुरूब होने के लिए झुकना, ढीलापन, मजबूती से ढीलापन, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो दुलूक के फिर क्या तर्जमा आप करेंगी कि सूरज का जो गुरूब होने का वक्त होता है ना उसको दुलूक कहते हैं। तो देखें, जवाल भी ढलने के लिए आता है और दुलूक भी ढलने के लिए आता है, लेकिन दोनों में बड़ा बारीक सा फर्क है। फिर इसके बाद अहम लफ्ज है गसकिल्लैल, गसक, गैन सीन काफ, इसके मानी है तारीकी छाना। तारीकी छाने के लिए कुरान में छह लफ्ज आए हैं, वल्लैली इज़ा अस अस, पहला लफ्ज है अस अस, सूरज गुरूब होते ही जब शाम का अंधेरा फैल जाता है तो उसके लिए अस अस का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर है गैन सीन काफ, गैन सीन काफ, इसके मानी है शफक गायब हो जाने के बाद का अंधेरा, रात का इब्तदाई हिस्सा, अव्वलुल लैल। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। अब आप देख लें कि गासिकिन, तो उसका रूप भी यही है। चौथा लफ्ज है गताशा, रात का तारीख होना, किसी की नजर जो है ना उसका कमजोर होना, धुंधला जाना, तो रात की तारीकी और नजर की कमजोरी को भी गिताश कहते हैं। वह अगतशा लैलहा व अखरजा दुहाहा। चौथा लफ्ज है वकब, अभी आपने सूरत फलक पढ़ी थी ना, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्री मा खलक व मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब। तो दो लफ्ज जो है वो मुतरादिफात एक ही आयत में आ गए ना, तो आपने गसक तो पहले पढ़ लिया, चौथा है वक़ब। मौका, बा का मतलब होता है किसी चट्टान वगैरह में गड़े का होना, वक़ब के मानी है गड़े में दाखिल होकर गायब हो जाना, इतनी तारीकी का छा जाना जिसके अंदर चीजें गायब हो जाएं। सूरज जो है वो वकब में आ गया तो सूरज का गुरूब हो जाना, व मिन शर्रे गासिकिन इज़ा वकब। और पांचवा दर्जा है सजा का, रात का सन्नाटा, तारीकी, जैसे इतना अंधेरा, रात जब पूरी तरह सुनसान होती है, खामोश होती है, पुरसुकून हो जाती है, सब सो जाते हैं, तारीकी पूरी तरह छा जाती है, उसके लिए सजा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। और वैसे अगर किसी के ऐबों को छुपा लिया जाए ना, बिल्कुल अंदर हो और आप हो बड़े पुरसुकून, आपके पास उसका ऐब है लेकिन आप पुरसुकून है, तब भी आता है सजा मआइबे अकीक, तब भी लफ्ज आता है। तो छठा अज़लमा का है, आप पढ़ चुकी हैं कि वाइज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू, सूरह अल-बकरा आयत 20 में आप ये पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे गसक का लफ्ज़ है, और अल-फ़जर, फा जीम रा, वसी पैमाने पर जो है वो फाड़ना, तो फजर जो है वो वसी पैमाने पर उसमें रोशनी से फूटती है ना, तो उसको फजर कहा जाता है। और चश्मों के फूटने के लिए भी आया था ना, मशहूदा शीन हादाल और हाजिर होना उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लफ्ज गवाही के लिए भी आता है, जैसे कोई किसी का शाहिद हो, और शहादत देना मशहूदा किसी तरह हाजिरी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आयत नंबर जो है वो 79 है, 79, इसमें लफ्ज है फतहज्जद। फतहज्जद इसका रूट है हा जीम दाल, और ये लफ्ज जो है ये जविल अजदाद में से है, जविल अजदाद में से है। सोना और जागना, सोना भी और जागना भी दोनों तरह ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो सोने के लिए 6 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ना, ये उसका छठा दर्जा है, आखिरी। हा जीम दाल, रात को सोना भी जागना भी, कभी सोना कभी जागना, सोते जागते रात गुजारना, रात को जागकर नमाज पढ़ना। और तहज्जुद क्या होती है कि जब तक आप जो है वो सोए नहीं, मतलब एक राय ये है कि तहज्जुद है ये कि पहले आप सो जाएं फिर उठें और फिर जो है वो आप नमाज पढ़ें। तो सोना और जागना, इस तरह ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसके बाद लफ्ज है नाफिलतन। नाफिलतन लफ्ज है, इसका रूट है नून फा लाम, और ये आप कसरत से इस्तेमाल करते हैं नफिल नमाज, और ये जायद को कहते हैं, जायद को, एक्स्ट्रा जायद। कुरान में इसके लिए 3 लफ्ज आए हैं, एक है अफ, जरूरत से जायद को भी कहते हैं, और जो अफू है उसके माने क्या होते हैं कि किसी चीज को छोड़ दिया जाए। जब आप किसी को माफ कर देती हैं तो क्या करती हैं, अफू दरगुजर से आप काम लेती हैं ना। दूसरा लफ्ज है नाफिला, नफल से है। नफल हर वो काम है जो वाजिबात और जरूरियात से जायद हो, नफली इबादत जिसमें फर्ज और सुन्नत के अलावा जो है जब नमाज पढ़ी जाए तो अल्लाह की रजा की खातिर उसको अदा किया जाए। सदका खैरात भी हो सकता है, जिसको जो है वो इन्फाक कहते हैं। इसी तरह रोजे, नफली रोजे, जैसे आज आप लोगों ने 10 मुहर्रम का रोजा रखा हुआ है, तो ये क्या है, ये नफल इबादत है आपकी। इसी तरह उमरा, ये भी नफल इबादत है। तो नेकी के काम जो है वो इजाफी तौर पर जो करना वो नफल इबादत कहलाती है। और तीसरा है दाद एनफा देफ, इसके मानी होते हैं असल मिकदार के बराबर जायद, जितनी चीज हो उतनी ही और ज्यादा। आपने पीछे सूरत अल बकरा में आयत 265 में पढ़ा था, कमसल जन्नतिन बिरवतिन असाबहा वाबिलुन फअतत टुकुलहा देफैन, दुगना जायद, यानी एक चीज उसके बराबर फिर इतनी ही और चीज। आयत नंबर 79 मुकम्मल हो गई। आयत नंबर 80, और इसमें जो है ये कोई लफ्ज ऐसे मुश्किल नहीं है, है ना। और यहाँ पे सुल्तान का लफ्ज जो है ये अहम लफ्ज है, और आप लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। ये लफ्ज जो है दलील के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दलील के लिए। और सुल्तान का लफ्ज जो है ये इक्तदार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, दलील के लिए, इक्तदार के लिए। दलील के लिए कुरान में 5 लफ्ज आए हैं, पहला दलील है, दूसरा हुज्जत है, तीसरा बय्यिना, चौथा बुरहान, और आखिरी दर्जा है सुल्तान का। और ये कहते हैं गलबा, कुव्वत, इख्तियार, अथॉरिटी लेटर को भी कहते हैं, ऐसी दलील जो वही इलाही से वाजे तौर पर साबित हो। फरमाने शाही को भी कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद है ये आयत नंबर 81 में, 81 में, जहा का और जहू का, इसका रूट है जे हा काफ, ये जवील अजाद में से है, भागना निकलना उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, भागना भी और निकलना भी। जे है काफ। अब आप देखें कि भागने के लिए पहला लफ्ज है फर्रा, मुल्जिम जो है भागता है, फरार होता है, तो फर्रा। दूसरा जो लफ्ज है वो है अबाका, अबाका का मतलब होता है कि गुलाम का आका के पास से भागना, किसी का अपनी जिम्मेदारियों से फरार हासिल करना। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे जब वो भाग कर भरी हुई कश्ती में पहुंचे तो उसके लिए आया, क्योंकि अल्लाह की इजाजत के बगैर उन्होंने जो है वो अपनी कौम को छोड़ा था। इज अबका इलल फुलकिल मशहून, वहां के पे आया तो भागे तो थे लेकिन अपने अल्लाह की इजाजत के बगैर गए थे। तीसरा लफ्ज जो है वो जहका है, जे हे काफ, ये जबील अजाद में से है, भागना भी निकलना भी, शिकस्त खाकर भाग खड़ा होना, किसी चीज का शिकस्त खाकर या कमजोर और मुजमिल होकर निकल पड़ना, उसके लिए आता है जी। आयत नंबर 83 है और इसमें लफ्ज है वना ना, इसका रूट है नून अलिफ या। कुरान में ये सिर्फ दो जगह पर आया है, एक आप पीछे पड़ चुकी हैं सूरत नंबर 6 आयत नंबर 26 में और दूसरा आप यहां पे पढ़ रही हैं। और इसका मतलब होता है कि तकब्बुर की वजह से दूर रहने वाला या दूर होने वाला। वरना आ का लफ्ज आता है दूर रहना, परे हटना, दूर होना, लेकिन क्यों? तकब्बुर की वजह से। आयत नंबर 83 है यूसा या हमजा सीन, मायूसी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आयत नंबर 84 है, इसमें लफ्ज है शाह के लाते, शीन काफ लाम शक्ल को भी कहते हैं ना, किसी चीज की हैयत शक्ल सूरत तरीका ज़हनी सांचा सोच उसके लिए इस्तेमाल होता है, यानी मादी तौर पे भी इस्तेमाल होता है, हिस्सी तौर पे भी। आप कहती हैं उसकी शक्ल कैसी थी, उसका सांचा कैसा था, ज़हनी यानी उसका ढांचा कैसा है। आप कहती हैं मेरे ज़हन में एक अश्काल आ रहा है, मुझे एक सोच आ रही है और मुझे वो चीज समझ में नहीं आ रही, इस तरह भी होता है। अहदा और आलमू ये दोनों सुपरलेटिव डिग्री हैं, और आलमू तो आपको पता चल ही रहा है, लेकिन अहदा ये हरफे इल्लत की वजह से इसका वजन अफालू वाला नहीं है, लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। इसम तफसील के इसके मानी है। और अब आ जाइए आयत नंबर 86 की तरफ, और शे ना लफ्ज है, रूट क्या है इसका? शीन या हमजा, शे को कहते हैं, चीज को कहते हैं ना। और आयत नंबर 86 में है तजेदू, वाउ जीम दाल वजादा, पाने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और आयत नंबर 88 है इज्तमाअत या इज्तमाती, तो जी मीम आयन, जमा होने के लिए ये आम लफ्ज है। और यहां पर क्या है कि मतलब इंसान और जिन सारे जमा हो जाएं, जहीरा आयत नंबर 88 में है जहीरा, इसका रूट है जोए हा रा, और इसके मानी क्या होते हैं? ये लफ्ज पीठ के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जोए हा रा मकत के ऊपर गर्दन तक का पिछला बैरूनी हिस्सा, और इसकी जमा जहूर आती है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, और जहीरा होता है जैसे किसी को पीट देने वाला, यानी किसी की मदद करने वाला। हाँ, किसी की मददगार के तौर पर भी, मदद के लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। पुश्त पनाही करना। आयत नंबर 89 है, इसमें लफ्ज है फाअबा। ये लफ्ज जो है आप पहले पढ़ चुकी हैं, इसका रूट क्या है? हाँ, शाबाश, अलिफ बा या अबा, और इसके मानी है इनकार करना, इनकार करना। और इनकार करने के लिए कुरान में कितने लफ्ज आए हैं? या पहले भी ये लफ्ज जो है वो पढ़ चुके हैं। पहला है अबा, इसके मानी होते हैं किसी बात को कबूल करने से इनकार करना, अड़ जाना, ना मानना, तस्लीम ना करना। तो इनकार के लिए ये आम लफ्ज है। किसी को मकरूह समझना, ना पसंद करना, किसी चीज से ना खुश होना। शैतान को जब सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने क्या किया? अबा वस्तकबरा। तो तकबर अलग आया है लफ्ज, लेकिन अबा के मानी क्या है? कि उसने इनकार किया, वो अड़ गया, उसने अल्लाह की बात को कबूल ही ना किया। दूसरा लफ्ज है अनकरा। नकरा के मानी होते हैं किसी चीज को ना पहचानना। तीसरा लफ्ज है जहादा। ऐसी बात का जबान से इनकार करना जिसे दिल से ही तस्लीम करता हो, जहादा। और चौथा है कफारा, और ये आखिरी दर्जा है। इसके मानिए किसी चीज को छुपाना, उस पर पर्दा डालना, उसको पहचानना ही नहीं। किसान को काफिर कहते हैं कि वो जमीन में दाना छुपाता है, रात को काफिरत उन कहते हैं कि वो दिन की रोशनी को जो है वो छुपा देती है। और इसी तरह काफिर जो है वो क्या करता है? ईमान को छुपाता है, उसकी पर्दापोशी करता है। तो बहरहाल अबा पहला दर्जा है और कफारा जो है वो आखिरी दर्जा है। तो एक ही आयत में अबा भी आया और कुफूरा भी आया, तो फर्क समझ में आए तो सोचें कि कुरान समझने की लज्जत में कितना फायदा, कितना जो है वो असर होगा, वो बयान नहीं किया जा सकता। आयत नंबर है 90, और इसमें जो है एक लफ्ज है तफजुरा और दूसरा लफ्ज है यम्बुआ। यम्बुआ, अब आप देखें कि पहला लफ्ज है फजारा, है ना, फा जीम रा, और फा जीम रा जो है इसके मानी होते हैं किसी चीज का वसी पैमाने पर फटना, और इस तरह ये लफ्ज जो है जैसे इन फजारा, पानी का चश्मे से फूट कर बह निकला जबकि दहाना कुशादा हो जाए, इस तरह भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इन फजारा इन बजासा मिलते जुलते लफ्ज हैं दोनों आपस में। जब चश्मे का दहाना पूरी तरह खुला हुआ नहीं होता और पानी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर भी उठ रहा होता है तो इन बजासा है, और जब मुंह पूरी तरह खुल जाता है पानी दहाने पर आकर बहने लगे तो इन फजारा है। तो बहरहाल हत्ता तफजुरा, तो यहाँ पे ये लफ्ज जो है वो किसके लिए आया है? फाड़ने के लिए आया है, कि यहां तक जो है तू फाड़ दे, और इसके बाद है यम्बुआ, तो वो फटेगा तो पानी निकलेगा ना, और यहां तक वो चश्मा बन जाएगा। तो यम्बुआ जो है ये चश्मे के लिए इस्तेमाल हुआ है। कुरान में चश्मे के लिए तीन लफ्ज आए हैं, एक आयन का है आयन। अब देखिए आंख को भी आयन कहते हैं, चश्मे को भी आयन कहते हैं, इनमें निस्बत क्या है? आंख से कतरा कतरा आंसू टपकता है ऊपर से नीचे की तरफ, जो चश्मा होता है उससे भी कतरा कतरा पानी जो है वो नीचे को टपकता है। तो दोनों में ये निस्बत है, आंख से पानी बहता है। इसी तरह मशकीजे के मुंह को भी आयन कहा जाता है क्योंकि उससे पानी जो है वो निकलता है। इसी तरह चश्मे को भी आयन कहते हैं। तो निस्बत क्या है? पानी नीचे आना। दूसरा लफ्ज है यंबू, इसका रूट है नून बा ऐन, इसके मानी है चश्मे से पानी फूटना। यंबू ऐसे चश्मे को कहते हैं जिससे पानी उबल रहा हो, इसकी जमा है यनाबी। उर्दू में आप इसको इस्तेमाल करती हैं मंबा, फलां चीज जो है ना उसका मंबा ये है। तो मंबा उस जगह को कहते हैं जहां से पानी फूटता है, जो उसका मकाम है। फिर आप आइए आयत नंबर 91 है, इसमें लफ्ज है नखील का, और ये बाग खेती को कहते हैं जहां खजूर के दरख्त कसरत से हों, इसका रूट है नून खा लाम, खजूर के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर है इने बिन, ये अंगूर की बेल को भी कहते हैं और अंगूर के फल को भी कहते हैं, अंगूर के एक दाने को भी इनाबतुन कहते हैं। फिर आ गया फतुफ्जिरा, तो अब इसका मतलब क्या है कि फटकर नहर का जारी होना ना, फतुफ्जिरा भी आ गया और अलनहार भी आ गया है ना। और नून हा रा जो है ये आपने पीछे सबक में आपने पढ़ा है जहां पे वला तनहर हुमा, कि वालदैन को डांटना नहीं है। अब आप सोच सकती हैं कि उधर डांटना है और इधर नहर है पानी की, तो मैंने बताया था निस्बत क्या है कि पानी का बह कर निकलना और अपने लिए जगह बना लेना, खून का बह कर निकलने के लिए भी आता है। इसी तरह जब कोई किसी को डांटता है तो डांटने से उसको जैसे जख्म हो जाते हैं, जगह सी बन जाती है, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो निस्बत आपस में ये है। तो फतुफज्जीरा और तफजीरा ये एक फैमिली का लफ्ज है। खिलाला खा लाम लाम दरमियान के लिए इस्तेमाल होता है। और ये आपने पीछे खलील लफ्ज भी पढ़ा था है ना, हम उसमें से उस वक्त गुजर गए थे, इसलिए कि आपको खलील जो है आप पहले ही पढ़ चुकी हैं कि खलील कौन थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए खलील का लफ्ज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्तेमाल किया है। और ये आयत 73 सूरत बनी इसराइल में आपने पढ़ा है, लता खजू का खलीला। तो जिस दिल में मोहब्बत जो है उसके अंदर जज्ब हो जाए, उसके दिल के अंदर सरायत कर जाए, ऐसा दोस्ती का दर्जा, तो उसको खलील कहा जाता है। और खिलाल दरमियान के लिए आता है कि बाग के अंदर जो है वो नहरें जारी हैं। फिर है किसाफन, आयत 92 है, काफ सीन फा, और ये कहते हैं टुकड़े को। अच्छा अब आप देखें कि टुकड़े के लिए भी आपने कई लफ्ज पढ़े हैं ना, टुकड़े के लिए आपने, टुकड़े के लिए कुरान में जो है वो नौ नहीं बल्कि 10 लफ्ज आए हैं। तो चलिए बाकियों को नहीं छेड़ते, लेकिन ये जो किसाफन है इसको देख लेते हैं, इसका चौथा दर्जा है। और किस्फत उन वाहिद है, बादिल या रुई के टुकड़े को कहते हैं जो आसानी से अलहदा भी हो जाए और जुड़ भी जाए। मुतखलखल अजसाम, अब आप देखें कि बादिल जो है इसको आप कोई शेप नहीं दे सकते, इसकी यानी तसव्वुराती शेप है, इधर उधर ऊपर नीचे, कभी कुछ बन रहा होता है कभी कुछ बन रहा होता है। आप जब जहाज में बैठे और सफर करें ना, आप जरूर इस बात का मुशाहिदा करें कि आप यूं लगता है कि बादल अब आपके नीचे आ गया, क्या बात है आपकी है ना, बादल आपके नीचे आ गया, और क्या क्या उसकी शेप बनती जाती है जो आपके तसव्वुर में होती है ना, शेप बनती जाती है। तो मुतखलखल अजसाम को कहते हैं ख्याली शक्लें। तो मुतखलखल अजसाम जैसे बादल या रुई का टुकड़ा, रुई को भी आप ले लें और उसके मुख्तलिफ उसकी शक्लें बना सकते हैं। बहरहाल आयत नंबर 92 है और इसमें लफ्ज है कबीला, काफ बालाम। अल कबील जो है ये कबीला की जमा है, और कबीला वो जमात जो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो हो और एक दूसरे के सामने हो। किबला, किबला सामने होता है ना, उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है किबला। और यहां पे भी रू दर रू के लिए आया है, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सामने या रू बरू के लिए। आयत नंबर 93 है और इसमें लफ्ज है जुखरुफ का। ये लफ्ज जो है इसका रुबाई है फ्रूट, और ये जीनत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुलम्मा की भी चीज को कहते हैं। और जीनत के लिए कुरान में 5 लफ्ज आए हैं, जुखरुफ इसका दूसरा दर्जा है। पहला है जीनत, दूसरा है जुखरुफ, जाहिरी सजावट, मुलम्मा साजी, वो जीनत जो मुलम्मा साजी से हासिल हो, जुखरफुल कलाम, जुखरफुल कौली गुरूरा। आप पढ़ चुकी है ना? चले अल्हम्दुलिल्लाह, आप ऐसा रिस्पॉन्स देती हैं कि आपने कभी सुना था या पढ़ा था तो बड़ी खुशी होती है। फिर इसके बाद अगला लफ्ज है तरका, तरका, और इसका रूट है रा काफ या। इसके मानी है चढ़ना, ये लफ्ज चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चढ़ने के लिए और खासतौर पर ऊपर को चढ़ना। इसके लिए 6 लफ्ज आए हैं, एक है अराजा, उरूज इसी से है, दूसरा है रकिया। इसके मानी झाड़ फूंक करना भी है, झाड़ फूंक करना, और दूसरे इसके मानी है बुलंदी पर चढ़ना भी। सूरत अल फातिहा का आपने नाम पढ़ा था, एक क्या नाम पढ़ा था सूरत फातिहा का? सूरत फातिहा का एक नाम जो है वो रुकिया है, दम, क्योंकि सहाबी ने जो है वो सूरत फातिहा पढ़कर जो है वो दम किया था। तो कबीले के सरदार को जैसे किसी बिच्छू ने, सांप ने, किसी जहरीली चीज ने काट लिया था, तो जब सूरत फातिहा को पढ़कर सहाबी ने दम किया तो उसके जिस्म से जो जहरीली चीज का जहर का असर था ना, जो उस पर चढ़ा हुआ था, वो उतर गया। तो इसके मानी क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता नरम रफ्तार से ऊपर चढ़ना, अपनी वुसत कुवत सरफ करना, अपनी हिम्मत के मुताबिक ऊपर चढ़ना, तो ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तरक्की भी इसी से है ना? क्या बात है, आप कितने खुश हो रहे हैं, अरे ये तो हमने सुना हुआ था। तरक्की में क्या करते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके ऊपर चढ़ते जाते हैं, बुलंदी की तरफ आते जाते हैं, माशाल्लाह। और फिर है नकरा ओहू, उसका रूट क्या है? काफरा हमजा, सुबहाना सिनबाहा, और आखिरी लफ्ज क्या है? रसूला, रासीन लाम, और इसके मानी है हवाओं का धीमी और नरम रफ्तार से चलना। और इसी तरह जो है ये लफ्ज रसूल और पैगाम लाने वाले के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, फरिश्ता भी हो सकता है पैगाम लाने वाला, और उसके साथ ही जो है वो कोई रसूल भी हो सकता है। इसी तरह रिसाला, आप उर्दू में रिसाला बड़ी कसरत से बोलती हैं, तो रिसाला क्या होता है कि जिसमें मुख्तलिफ मैसेजेस जो है वो आप देते हैं।